Om Shanti. Very warm welcome. आज का हमारा राजयोग मेडिटेशन सेशन का पहला सत्र, जिसमें हम जानेंगे स्पिरिचुअलिटी जो हमारे डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, और इसे बताने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित है राजयोगिनी बीके ज्योति दीदी जी। हम सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप पानीपत से हमारे सम्मुख हैं। आपने अपना जीवन पिछले 30 वर्षों से भी अधिक वर्षों से प्रभु के इस बेहद के कार्य में न्यौछावर किया है। बहुत गहन राजयोग और आध्यात्मिकता का आपके पास अनुभव है, तो हम सभी सुनेंगे ज्योति दीदी जी से। पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी बीके हैं, जो रेगुलर ब्रह्मा कुमारीज के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए मुरली क्लास कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाला है, तो आप सभी वहां जा सकते हैं। यहाँ पर मेडिटेशन सेशन चलने वाला है। हम सुनेंगे राजयोगिनी बीके ज्योति दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी भी सभी ने नहीं बोला है ओम शांति, एक बार मुस्कुरा के बोलिएगा ओम शांति, हाथ जोड़ के बोलिएगा ओम शांति, जो आपके आजू बाजू में बैठे उनको बोलिएगा ओम शांति। कैसे बोला आपने, ऐसे करके ओम शांति या ऐसे करके ओम शांति? अच्छे से बोलिए, आई कांटेक्ट करते हुए, मुस्कुराते हुए, है ना। बहुत ही सुंदर विषय है आज का, कि हमारा जो दिनचर्या है उसके अंदर आध्यात्मिकता को हम कैसे यूज करें, क्योंकि जीवन किसका कितना है इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं है। कोई 80 साल में जा रहा है तो कोई 8 साल में भी जा रहा है, लाइफ कब तक है नहीं मालूम, लेकिन हम जब तक भी हैं उसमें जो दिन जो पल हमें मिले हैं वो पल हम मुस्कुरा के जिए और हर पल को जिए, उसके लिए आध्यात्मिकता जो है अति आवश्यक है। जिन भाई बहनों को कन्नड़ में ट्रांसलेशन चाहिए उनका 92 नंबर है, तो 92 नंबर कन्नड़ भाषा में सुन सकते हैं आप। तो प्रतिदिन हमारी दिनचर्या में डे टू डे लाइफ जो हमारी चल रही है, इसमें बहुत सारे विघ्न, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे मूड, जिसके कि हम अच्छी तरह से अनुभवी हैं। सुबह कैसे होते हैं, ऑफिस जाने तक कैसे होते हैं, ऑफिस में कैसे होते हैं, ऑफिस में आने के बाद कैसे होते हैं, और रात्रि को हम कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हमारी अवस्थाएं होती हैं, भिन्न भिन्न मूड होते हैं। लेकिन अगर हम एनालाइज करते हैं, खुद को विजुअलाइज करते हैं, तो हम देखते हैं जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। सुबह उठते ही जो फ्रेशनेस होनी चाहिए, सुबह उठते ही जो एनर्जेटिक थॉट्स होने चाहिए, सुबह उठते ही एक दूसरे का चेहरा देखते स्माइलिंग के साथ जो विश होना चाहिए वो नहीं होता है। होता तो है लेकिन वैसा नहीं होता है जैसा होना चाहिए। फिर हम अपने नाश्ते का टाइम देखें, करते तो सब है लेकिन नाश्ते में हमारा कैसा रवैया होता है, कैसा मूड होता है, देने वाले का भी लेने वाले का भी। इसी तरह ऑफिस जाते हैं, जाते जाते यहाँ पर क्या थॉट सिस्टम चल रहा है, जो घर में है उनका क्या चल रहा है। तो अगर हम ये सारा कुछ एनालाइज करते हैं एक समय बैठ करके, उसको आध्यात्मिकता कहते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद खुद के साथ नहीं बैठेंगे, खुद खुद को नहीं देखेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक नहीं बन सकते हैं। खुद को देखना बहुत 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 जरूरी है, जो कि हम भूल गए हैं, और इसकी शुरुआत हम यहाँ पर इतने पवित्र स्थान पर आए हैं यहाँ से करके जाएंगे। क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं हमें बहुत सुंदर अभ्यास पड़ा हुआ है दूसरों को देखने का, और वो अभ्यास इतना नेचुरल हो गया है, इतना नेचुरल हो गया है कि अगर हम अपने अंदर संकल्प ले भी लेना कि क्या करना किसी की लाइफ से, हमें क्या मिलना, अपने अंदर ये संकल्प ले भी ले तब भी हमारी नजर उधर जाती है, तब भी हमारे थॉट उधर जाते हैं, क्योंकि नेचुरल हो गया दूसरों को देखना। तो स्वयं को देखना नेचुरल हो जाए, ये है आध्यात्मिकता। स्वयं को करेक्ट करना शुरू हो जाए, ये है आध्यात्मिकता। अपने इस शरीर के अंदर जो बैठी यहां आत्मिक शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसको देखना शुरू करें, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। अब जो इस बॉडी के अंदर एनर्जी है, जिसकी बदौलत हम चल रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, हमने कभी उसको तो देखा नहीं, उसको क्या चाहिए उसे कभी पूछा नहीं। अपने अंदर बैठी जो आत्मा है वो इस शरीर में एक शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। उस आत्मा के निकलते ही ये शरीर क्या हो जाता है, मुर्दा, डेड बॉडी। ऑनेस्टली अपने आप से पूछें कि क्या मैंने कभी स्वयं को देखा, स्वयं को महसूस किया, कभी बैठ करके किसी ने यह थॉट क्रिएट किया हो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं ऊपर से आई हूं, आखिर मुझे आज नहीं तो कल ऊपर जाना है, जितने भी पल मुझे इस शरीर में इन संबंधियों के साथ जिस भी परिवार में मिले हैं वो मुझे अच्छे से ही काटने हैं, अच्छे से ही पास करने हैं, मजबूरी से नहीं करने हैं। कभी किसी ने अपने से बात नहीं की, किसने की, पूरी सभा में एक तो हाथ खड़े हैं, है ना, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे पहले बताया ना, दूसरों को देखने की आदत नेचुरल हो गई है, तो दूसरों के बारे में सोचने की आदत भी नेचुरल हो गई है। सोचते भी दूसरों के बारे में, सुबह उठते ही नजर दूसरे पर जाएगी, वो उठा या नहीं उठा, है ना, सैर करते जाएंगे और देखेंगे फलाना सैर पे आया या नहीं आया, मैं आया हूं मुझे साइलेंट वॉक करनी है, विदाउट टॉक करनी है, ये नहीं आएगा, वो आया नहीं, क्यों नहीं आया, चलो फोन करके पूछते हैं। तो दूसरों के बारे में सोचना भी, दूसरों के बारे में देखना भी, दूसरों के बारे में, और जो कर्म फिलोसफी है वो भी दूसरों के बारे में वकील बन के वकालत करते हुए अंदर विचार चलाते रहना है, ये हमारी लाइफ हो गई है। हमारे सामने कोई एक छोटा सा भी गलत काम करता है तो कैसे चलते हैं विचार, उनको रोकना सहज हो जाता है या मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आध्यात्मिकता क्या कहती है, आप अपने पास रहिए, अपने को देखिए, कहीं आप उस दिशा में तो नहीं जा रहे हैं जो बाद में आपको कोई डिसीज गिफ्ट मिलने वाली हो, हेडेक गिफ्ट मिलने वाली हो, टेंशन गिफ्ट मिलने वाली हो, स्ट्रेस गिफ्ट मिलने वाला हो। अगर हम ये चीज देख पाते हैं, सोच पाते हैं और उसको कर पाते हैं तो हम आध्यात्मिक पर्सन है, हमारे रूटीन में आध्यात्मिकता यूज हो रही है। और अगर हम ये चीज की और अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो हमें जरूरत है अपने पर अटेंशन देने की, और जब हम अपने पर अटेंशन देंगे दूसरों पर नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरों पर अटेंशन दिया जाता है। ये आप करके देखिएगा, जब आप खुद पर अटेंशन देंगे, खुद को संवारेंगे तो दूसरे ऑटोमेटिक संवरते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम अटेंशन सारा ही दूसरों की ओर देते हैं, खुद को नहीं देखते हैं, तो डबल नुकसान होगा। और वो डबल नुकसान क्या होगा, ना मैं सुधरूंगी ना दूसरा सुधरेगा। ये आप सबने अनुभव किया होगा, आपने अपने छोटेपन, जैसे ही आपकी मैरिज हुई तो अपने बच्चों को छोटेपन से ही आपने उठाना शुरू किया, उठ जाओ बेटा टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जाओ, वो नहीं उठते, फिर आप सेकंड टाइम उठाते, फिर नहीं उठते, थर्ड टाइम उठाते, फिर नहीं उठते हैं। और बच्चों को मालूम है जो थर्ड अलार्म है मम्मी पापा का वो फाइनल है, तो पहले जो तीन टाइम आपने बोला है वो केवल आपने अपनी एनर्जी को ही वेस्ट किया है, और बच्चे जो है आपको चलाना सीख गए हैं, और आप क्या कहते हो, हम बच्चों को चलाना सीख गए हैं। बच्चे आज दिन तक भी शादी होने के बाद भी अपने ही टाइम पर उठ रहे हैं, अपनी ही मर्जी से खा रहे हैं, अपनी ही इच्छा का खा रहे हैं, आपकी मर्जी नहीं चल रही है, ना उनके उठने में, ना उनके खाने में, ना उनके सोचने में, ना उनके सोने में। आप सबकी तो बड़ी शुभ इच्छा है कि रात को जो है वो बच्चे 8:30-9 बजे मोबाइल बंद करके सो जाएं, सवेरे उठ करके मॉर्निंग वॉक करें, सवेरे ये करें वो करें, लेकिन कहां पूर्ण हो पाती है। दोष बच्चों का नहीं है, दोष आप जिन पर ये अटेंशन दे रहे हो उनका नहीं है, दोष किसका है? क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है, और जब परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है उसको कहते हैं आध्यात्मिकता। तो अब अपने दिल से हम ये भी पूछ सकते हैं, क्या परिवर्तन की शुरुआत हम स्वयं से करते हैं या दूसरों से ही कराना चाहते हैं? कुछ एक गुण हमारे में नेचुरल होते हैं, किसी में पंक्चुअलिटी का गुण नेचुरल होता है, वो जहां भी जाएंगे समय से पूर्व पहुंचेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और होती है, दूसरा लेट पहुंचेगा तो खाली बैठे इरिटेट होते रहेंगे, यह अब आया है, इसको भी टाइम पर आना चाहिए ना, देखो कितनों का टाइम वेस्ट किया, इतने लोग पहले आ गए, यह अब आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये वैल्यू है? वैल्यू तो थी कि आप पंक्चुअल हो, समय से पूर्व आए हो, नहीं तो समय पर ही पहुंचे हो, लेकिन जो बाद में हम कर रहे हैं वो क्या है? तो किसी भी वैल्यू को अगर हमारे जीवन में हमने फील किया है कि मैं एक्टिव हूं, अलर्ट हूं, पंक्चुअल हूं, रेगुलर हूं, लेकिन वो एक्चुअल वाला हूं या केवल अपना दिखाने वाला हूं? अगर एक्चुअल वाले हो तो यहां जब हम आ गए समय से पूर्व तो हम बंदगी भी कर सकते हैं, ध्यान साधना भी कर सकते हैं, कुछ और जैसे पहले कहा कि एक नजर अपने पर, तो अपने पर वो नजर हम डाल सकते थे कि आज सुबह से लेकर के अभी तक मेरा समय कैसा रहा, मैंने क्या क्या किया, उसमें क्या मेरा को अच्छा कर लेना चाहिए था जो छूट गया, जो मैं आने वाले समय में वो अच्छा कर सकता हूं, ऐसा हम सोच सकते थे, लेकिन नहीं, नजरें कहां थी? लेट आने वाले पर। तो इसलिए कहा कि हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो हमारी थिंकिंग होती है, हमारे एक्शन होते हैं, हमारा बिहेव होता है, उन पर अटेंशन देना ही आध्यात्मिकता है। कितने सारे मीनिंग आपको पता चलते जा रहे हैं, इनको केवल लिखिएगा नहीं, सुनिएगा नहीं, लेकिन अभी से ही करना भी शुरू करना है। बहुत अच्छा, इसके लिए आपको फॉर्मूला भी बताऊंगी कि क्या क्या करना है, लेकिन उससे पूर्व हम एक चीज पे अटेंशन देंगे कि घर परिवार में रहते हुए हम 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं, या कहीं कहीं 2 भी हैं, बच्चे बाहर देशों में सेट हो गए हैं तो हम हस्बैंड वाइफ ही हैं, ऐसा है ना, 2 से लेकर के 10 तक फैमिली मेंबर्स होते हैं, कई लोग ज्वाइंट फैमिली का होते हैं, तो जहां 2 होते हैं वहां उनके बोर होने की संभावना होती है, वो कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाए रखते हैं कि घर में अकेले क्या ही करें, चलो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 3-4 होते हैं तो संस्कारों की एडजस्टमेंट में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है तो कशमकश रहती है, ये सारी चीजें चलती है परिवारों में। लेकिन चाहे 10 फैमिली मेंबर हो, 5 हो, 2 हो, इवन देन मैं अकेला भी हूं, मेरी लाइफ ऑलवेज चेयरफुल हो, ऑलवेज एक्टिव अलर्ट हो, उसके लिए मुझे कुछ करना है। क्या करना है? उसके लिए मुझे खुद पर अटेंशन देना है, खुद को देखना है, किसी के बारे में कोई चिंतन नहीं करना। आजकल ये मोबाइल है, देश विदेश की खबर तुरंत हमारे पास आती है, न्यूज़पेपर है, सारी नेगेटिविटी जितनी भी होती है वो तुरंत आती है, होता उसमें पॉजिटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ते नहीं। तो हमें क्या करना है? किसी की भी नेगेटिविटी पर ज्यादा चिंतन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि किसी के अवगुण देखोगे तो उसका अवगुण तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अवगुण तुम्हारे में आ जाएगा। तो गलती से भी किसी की कमियों का चिंतन नहीं करना है। किसी की कमी पता होना जरूरी है, कि ये आएगी तो ये बहुत बड़बड़ करेगी, बहुत बोलेगी, और इसका बोलना जो है ना दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, ये कमी है, ये मुझे पता है। लेकिन उस समय मुझे साइलेंस रहना है और प्रे करनी है कि वो भी साइलेंट हो जाए। वो वाला नहीं सोचते हैं, लेकिन वो कमी फिर 10 लोगों को फैला करके क्या करते हैं, वैसा वाइब्रेशन बना करके उसको और वाइब्रेशन देते हैं कि हाँ तुम इस चीज को और बढ़ोतरी करो। अगर मेरे परिवार में किसी का गुस्सा बढ़ रहा है तो वो गुस्सा करने वाले का दोष नहीं है, उसके आजू बाजू जो बार बार सोच रहे हैं ना कि ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत गुस्सा करता है, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम हाँ और करो और करो और करो। उसको चारों ओर से ये वंदन दीवारों से भी आवाजें कौन सी आ रही हैं, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत गुस्सा करता है, तो उसको कौन सी एनर्जी मिल गई गुस्सा करने की, करेगा ना। तो हमें सहयोग देना है, क्या सहयोग देना है, उनके लिए अच्छा सोचने का। तो सबसे पहली बात, हम परिवार में रहेंगे हैप्पीएस्ट लाइफ, खुशी भरा जीवन। तो पहली थिंकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, मुझे हर मोमेंट को खुशी खुशी से लेना है। उठेंगे तो कैसे, खुशी से, मजबूरी से नहीं, अरे 8 बज गए उठना ही पड़ेगा, अरे 7 बज गए उठना ही पड़ेगा, नहीं, खुशी से उठना ही है ना। खुशी से उठो या मजबूरी से उठो, खुशी से उठोगे तो आपको फायदा है, मजबूरी से उठोगे तो शुरुआत में ही आपकी एनर्जी लो हो जाएगी तो दिन में क्या करेंगे। तो हर कार्य खुशी से करना है, खुशी से किया हुआ हर कार्य सफलता की ओर ले जाता है, खुशी से किया हुआ हर कार्य परिवार को सक्षम बनाता है, खुशी से किया हुआ हर कार्य आपके परिवार में एनर्जी की लहर फैलाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में। दूसरे की चाल कैसी है वो दूसरा जाने, लेकिन मुझे क्या करना है, हर हाल में जैसा बोल रहे हो वैसा ही रहोगे फिर, हर हाल में, हर हाल में खुश रहना है। तो हर हाल में खुश रहने के लिए, खुशहाल रहने के लिए मुझे अपने पर ही अटेंशन देना है, दूसरों को देखते हुए भी नहीं देखना है। अगर हम खुश हैं तो हमारा मुस्कुराता चेहरा जो है वो दूसरों को भी खुशी देगा, लेकिन जब हम उठते हैं या कुछ करते हैं तो हमारी खुशी गायब होती ही दूसरे को देखने से। इसने मुझे तो कहा था टाइम पर उठना, खुद देखो, जैसे ही ये विचार आया तो मेरी खुशी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले कहा कि आध्यात्मिकता क्या है, खुद को देखना, खुद से बातें करना। जब खुद से देखेंगे, खुद से बातें करेंगे, दूसरों को देखेंगे तो आपकी खुशी, आपकी एनर्जी सब डाउन होने वाला है, वो बरकरार रहने वाली नहीं है। दूसरा, हमारी खुशी कहाँ चली जाती है, जब हमारे सामने कोई बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन कर्म बहुत घटिया है जाती है ना, कि अरे देखो इसको सारे पूछ रहे हैं, इसकी प्रमोशन हो रही है, उसकी नहीं हो रही, वो ईमानदार है, 15 साल हो गए इसको जॉब करते हुए, पर बॉस पता नहीं कैसा है। जो लोग कड़े हैं, करूर हैं, दूसरों को रिगार्ड नहीं देते हैं, उनकी प्रमोशन हो गई, लेकिन ये हमारे वाले तो ईमानदार थे, इनका तो रह गया। भाई लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि जरूर हेराफेरी और थोड़ा करना चाहिए लेन देन, हमारी भी शायद प्रमोशन हो जाए, लेकिन असली प्रमोशन तो यही है कि हम सदा खुश रहते हैं, असली प्रमोशन तो यही है कि हमारी मानसिक स्थिति कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती, असली प्रमोशन तो यही है कि हमारा मन जो है वो शक्तिशाली है। बड़ी सीट पर अगर हम आ भी गए, बड़ा पोस्ट पोजिशन प्राप्त कर भी लिया, लेकिन खुशी का क्या, शांति का क्या, प्रेम का क्या, जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमारी जरूरत है वो क्या है, खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये हमारी नेसेसिटी है, ये हमारी जरूरत है। लेकिन इन जरूरतों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है, नेम फेम बस इन्हीं में ही जाता है। ये सब चीजें आपके पास आएंगी, आपके पीछे दौड़ेंगी, आपको लोग ढूंढेंगे, आपको नेम फेम नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढेंगी ये चीजें, लेकिन कब, जब जिस चीज की जरूरत है आप उस पर काम करेंगे तब। जरूरत केवल सुख शांति की है, आनंद और प्रेम की है, जरूरत केवल अपने को स्टेबल रखने की है, जरूरत केवल मनोबल को बढ़ाने की है। वो बढ़ाओ तो सही, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोला और हम हाइपर हो गए तो क्या फायदा आपके बड़े पोस्ट पोजीशन का। 10 लोगों को आप हैंडल नहीं कर सकते प्यार से, 10 बंदों को आप अपने फैमिली मेंबर नहीं मान सकते, तो ऐसे का क्या फायदा। तो सबसे पहले हमें वो कार्य करना है जिसकी जरूरत है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम हर कार्य खुशी से करेंगे, चाहे वो कार्य कैसा भी हो, कैसा भी हो। कैसे भी हो का मतलब आप समझ गए, कार्य छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हम खुशी से करते हैं प्रभाव उसका है। बड़ा कार्य भी अगर खुशी से नहीं कर रहे हैं तो, छोटा कार्य भी अगर खुशी खुशी से कर रहे हैं तो, इन दोनों को आप चेक करना कि खुशी से किया हुआ कार्य आपको संतुष्टता देगा, लेकिन वैसे ही किया गया कार्य आपने चाहे कितना ही महान किया हो लेकिन दिखावे के लिए किया है, मजबूरी में किया है, ईगो से किया है, तो वो आपको खुशी देने वाला नहीं है। तो पहले मुझे ये चेक करना है मेरा हर कर्म कैसा है, खुशी से करता हूं या मजबूरी से करता हूं, कहीं किसी को देखता तो नहीं है। दूसरी बात आती है हम्बल, एकदम पोलाइट बन जाओ, निर्मान बन जाओ, झुक जाओ। जो जितनी बड़ी पोस्ट पर है, जो अपने को जितना बड़ा समझता है, वो उतना निर्मान होगा, उतना झुका हुआ होगा। जिस वृक्ष पर फल होते हैं वो वृक्ष सीधा होता है या झुका हुआ होता है? झुका हुआ होता है ना। तो हमारे अंदर अगर बड़प्पन होगा तो हम कभी नहीं कहेंगे मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, कभी नहीं कहेंगे, सेवक हूं, सेवा कर रहे हैं। ये हायर थिंकिंग, ये है आध्यात्मिकता। और ये हायर थिंकिंग जो है ये उन्हीं में आएंगी, सबसे पहला जो हैप्पी होंगे, दूसरा जो हम्बल होंगे, तीसरा ये हायर थिंकिंग है। अब आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, प्रश्न नहीं एक स्टोरी है, लेकिन उसका जवाब आपको ही देना है। एक व्यक्ति है, वो 3 बच्चों को अपनों को पाल रहा है, बड़े मुश्किल वक्त में भी जैसे तैसे करके उनको 2 टाइम खाना दे रहा है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बच्चों को कहता है बच्चे आप कुछ कर लो, लेकिन बच्चे हैं कि वो सुनते ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो ये नहीं सुनते तो मैं इनके भविष्य का सोच लूं, जैसे हम अपने बच्चों के भविष्य का, करियर का सोचते हैं, चाहे वो कहना माने ना माने, पर हम उनके लिए अच्छी अच्छी पोस्ट पोजीशन देखेंगे, अच्छा वो स्टडी करें, सब सोचते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी सोचा और खूब मेहनत की, खूब धन कमाया, खूब कमाया, करता करता बहुत आगे बढ़ गया, बच्चे और ही नालायक होते चले गए। अब उस व्यक्ति ने एक लेटर लिखा मरने वक्त कि बच्चे मैं आपको अपना सारा कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने हाथ से नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद फलानी जगह पर जाना, आपको सारी संपत्ति वहां मिलेगी। ये लेटर लिख करके उसकी डेथ हो गई और वो गया। तो बच्चों ने जैसे लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के पश्चात वो वहां गए कि आज हमारा धन संपत्ति हमें मिलेंगी, तो उनको वहां 3 मटके मिले और तीनों मटकों पर 3 बच्चों का नाम था। और बच्चों ने अपना अपना मटका उठाया और खुश हो गए कि इसमें अशर्फियां होंगी, धन होगा, इतना कमाया है, पापा ने जाते जाते इसमें सब होगा। पहले वाला बच्चा मटकी खोलता है तो उसमें मिट्टी, दूसरे वाला बच्चा मटकी खोलता है तो उसमें गोबर, तीसरे वाला बच्चा मटकी खोलता है तो उसमें थोड़ी सी कुछ चंद सोने के सिक्के थे। बच्चे बड़े कंफ्यूज और उनको इतना गुस्सा चढ़ा, वो पहले 2 वाले जिसपे गोबर और मिट्टी थी, वो तीसरे को कहते हैं पापा जब जीवित थे ना तब भी तेरे को ही प्यार करते थे, लास्ट में भी तुझे ही देके गए ना सारा कुछ, हमें तो देखो गोबर और मिट्टी ही देके गए हैं। पूरी सभा में से मैं यह प्रश्न पूछती हूं, वो केवल गोबर और मिट्टी ही था या कुछ था और? गोबर से भाव क्या था और मिट्टी से भाव क्या था, और वो जो चंद सिक्के थे सोने के उससे भाव क्या था, कोई बता सकता? मान लो यही आप 3 भाइयों के साथ हुआ हो, घर में जो 3 भाई हैं, तो इसका भाव अर्थ समझ सकते हैं? क्योंकि हायर थिंकिंग की बात चल रही है ना, सोच रहे हैं, अरे मिट्टी देके चला गया, अरे गोबर देके चला गया, कैसा गोबर जैसा दिमाग था, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। अब हायर थिंकिंग वाले आप बैठे हैं, तो अब आप कैसे डिसीजन लेंगे? एक मटका भर मिट्टी का क्या ही करोगे आप? आप बता रहे हैं, गोबर और मिट्टी को खाद बना लेंगे, पर मिट्टी तो किसी एक की है ना, गोबर दूसरे का है। मिट्टी तो बड़े की है, गोबर उसके छोटे का है, और सबसे छोटे के तो सोने के सिक्के हैं। पैसे से यंत्र तो तब खरीदेंगे जब वो किसी एक के पास आगा, वो तो छोटे वाले का है। संपत्ति तो अलग अलग है सबकी, प्रेम तो आजकल कहां ही देखने को मिलता है। आध्यात्मिक होगा तो वो कुछ खरीदेगा और सारे भाइयों को सेट करेगा। वेरी गुड, थोड़ा और सोच को ऊपर ले जाओ जरा। हाँ, खड़े होके बोलो तो, बैठ जाओ। हाँ जी, मिट्टी और गोबर डालेंगे, ये सेम जवाब उधर से ही आया, पर वो अलग अलग है तीनों भाइयों का। तीनों भाइयों को एक होना पड़ेगा, पर हायर थिंकिंग तो केवल मेरे लिए है ना, तीनों के लिए कौन किसकी मानता है? आज कौन कहेगा तू मेरे को अपना गोबर दे दे, मैं अपनी मिट्टी में ये मिला करके वो करता हूं? वो कहेगा जब लाभ होगा तो पता नहीं ये कहां चला जाएगा और आया बड़ा मेरे को कहने वाला। तो आज कोई किसी के साथ मिलना नहीं चाहता है, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, चाहे वो गोबर का मटका है, चाहे वो मिट्टी का मटका है, चाहे वो सर्फी का मटका है, वो सोने के सिक्के का। ऐसे ही जैसे आपने विचार क्रिएट किए हैं, उन बच्चों ने भी बहुत सोचा, लेकिन सोचने के बाद आगे आके बोलेंगे, दूर से सुनाई नहीं दे रहा। जी, मिट्टी का भाव क्या बता रहे थे? वेरी गुड, बहुत नजदीक पहुंच गए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बिल्कुल पास आ गए हैं आंसर के, सही जवाब है लगभग। तो वो भाइयों से तो समस्या सुलझ नहीं रही थी, वो राजा के पास जाते हैं, तो राजा उनकी समस्या जो है वो पल भर में सुलझा देता है। वो बोलता है आपके पापा ने आपके साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया है, लेकिन आप उनके इशारे को समझ नहीं पा रहे हो। जिस भाई को ये मिट्टी का मटका मिला है, मिट्टी का मटका अर्थात सारा जो जमीन है, खेत है, वो बड़े वाले के है। जिस भाई को गोबर का मटका मिला है, तो जितनी भी मेरे पास गायें भैंसे हैं, वो सारी उसकी है। और जिसको अशर्फियां और सोने के सिक्के हैं, वो अपना बिजनेस कर सकता है। लेकिन फिर वो तीनों भाई राजा को बोलते हैं कि राजन, हमारी कन्फ्यूजन तो वही रही, कन्फ्यूजन तो वही रही। तो कहा कैसे? कहा हम क्या करेंगे खाली जमीन का, खेत का? वो कहता मैं क्या करूंगा भैंसों का? वो कहता मैं छोटे से इससे कैसे बिजनेस शुरू कर सकता हूं? तब बड़े अच्छे मधुरता से राजा ने समझाया कि आप खेत पर पसीना बहाओ एक बार, फिर पूरी उम्र बैठ करके वो जो खेती होगी, जो पैदावार होगी, जो उससे धन आएगा, पूरी उम्र बैठ करके खाओ, लेबर लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरे को कहा केवल गायें भैंसे नहीं है, गायें भैंसे जो दूध देंगी, वो दूध जब बिकने जाएगा तो क्या आपको पैसे नहीं आएंगे? जब वो पैसे आएंगे तो क्या आपके पास संपत्ति नहीं जमा होगी? तीसरे को कहा कि वो छोटा सा जो तुम बिजनेस शुरू करोगे, आगे तुम्हें ये कार्य को बढ़ाना है और धनवान खुद बनना है। तुम्हारे पिताजी जैसा समझदार इंसान इस दुनिया में कोई ही होगा कि जो अपने बच्चों को दे भी, और देना कैसे है कि वो परिश्रम करके उसे आगे बढ़ाए। तो राजा ने उनका अर्थ भी समझाया, उनको उनकी संपत्ति भी बताई और उनकी समस्या का समाधान भी किया। लेकिन आज परिवारों में ऐसा नहीं होता है। आज परिवारों में सामने उनके पूरी प्रॉपर्टी भी दिख रही है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो उसमें फिर हमें अच्छी थिंकिंग रखनी है, और वो अच्छी थिंकिंग क्या होती है, उसके लिए फिर हम आते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं राजयोग। राजयोग क्या होता है? खुद को साधना। राजयोग क्या होता है? खुद पे कंट्रोल करना। राजयोग क्या है? जो हमारी अच्छी थिंकिंग है, हायर थिंकिंग है, उसको स्टेबल रखना। किसी के कर्म के प्रभाव में अपनी थिंकिंग को वीक नहीं करना, अपनी थिंकिंग को नेगेटिव नहीं करना, अपनी थिंकिंग को वेस्टेज में नहीं ले जाना है। क्योंकि आज मेजोरिटी हम सब जितने भी यहां बैठे हुए हैं, या तो नेगेटिविटी है या वेस्टेज है। पॉजिटिविटी बहुत रेयर, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। ऐसा नहीं कि आपके घरों में मंदिर नहीं बने हुए हैं, सबने अपने घरों में अलमारियों में मंदिर बनाए हुए हैं, छोटा सा कोना भगवान को दिया हुआ है घरों में, दिया हुआ है या नहीं? हर घर में एक कोने में मंदिर जरूर बना हुआ है और धूप बत्ती भी वहां करते हैं, सवेरे खड़े होकर के हाथ भी जोड़ते हैं और अपनी तरफ से किसी का बुरा भी नहीं करते हैं। अपनी तरफ से आप किसी को अगर कोई सहयोग चाहिए हम तुरंत देते हैं। देते हैं या नहीं देते? देते हैं ना, क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारत जो है वो महान देश है। भारत वो भूमि है जहां भगवान का अवतरण होता है। भारत वो भूमि है जहां पर सब रल मिल के रहते हैं और बहुत सारे त्योहार इकट्ठे मनाते हैं। तो भारत में अपने आप में ही बहुत एनर्जी है, लेकिन हमने ना अपने को देखा ना इस एनर्जी को देखा। हमने क्या किया? जितने छोटे मोटे काम हमसे अच्छे हो सकते हमने किए, जितनी प्रेयर हमसे हो सकती, जितनी भक्ति हो सकती हमने अपनी क्षमता अनुसार की, लेकिन क्या वो एक्चुअल थी? जैसे आपको सबसे पहले बताया कि आप पंक्चुअल तो हो, लेकिन जब दूसरे लोग लेट आए तो आपकी थिंकिंग कैसी थी? तो इसमें ही हम समझ सकते हैं कि हम एक्चुअल में क्या है। इसी ही तरह जब मैं ये कह रही हूं कि हम अच्छे काम करते हैं, लेकिन हम अच्छे काम कब करते हैं? जब हमारा मूड होता है। हम अच्छे काम कब करते हैं? जब हमारे पास कुछ होता है। हम अच्छे काम कब करते हैं? जब हमें किसी को कुछ दिखाना होता है। ये कैटेगरी है अच्छे काम करने की। या तो किसी को दिखाना होता है तो अच्छे काम करते हैं, या फिर अच्छे काम हम तब करते हैं कि चलो मैंने जो पाप करता रहता हूं ना, रिश्वतें लेता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, वो थोड़ा कटते ही चले जाए, या तो इसलिए अच्छे काम। मतलब अच्छा काम करने की बहुत सारी कैटेगरी है, वो आप सबको पता है कि आप किसी भी हाव से करते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता कहती है कि अगर आप पुण्य करते हैं, अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन होगी, संतुष्टता होगी। आपको फिर कुछ मिले या ना मिले, आप उसमें भी जो पहली क्वालिटी बताई, खुशी, आप खुश रहेंगे। अब आप अपने आप को देखो कि अगर मान लो हमें अनाउंस हुआ हो कि आज इनको ये प्राइज मिलने वाला है, इन बिटवीन कुछ भी हुआ पीछे कारण, किसी और का अनाउंस हो गया और आप अपने साथ अपने 50-60 मित्र संबंधियों को लेके आए थे कि आज मुझे ये अवार्ड मिलना है, या आज मुझे प्रमोशन होना है, या आज मुझे ये अनाउंस किया जाएगा, इतने में ही किसी और का कर दिया, पीछे क्या हुआ? देने वालों का किसके साथ क्या मीटिंग सेटिंग हुई? हमारा चेहरा कैसा बनता है? हमारी थिंकिंग कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? ले ली होगी रिश्वत, नाम तो मेरा था, डिजर्व तो मैं करता था, उसको तो कुछ अकल भी नहीं थी जिसका नाम ले दिया, उसके अंदर तो कुछ क्वालिटी भी नहीं थी। कितनी नेगेटिविटी आ गई, और हम क्या कहते हैं, हमने तो आज सारा दिन किसी का बुरा किया ही नहीं। जो अपना ही नहीं अच्छा कर सकता तो वो किसी का अच्छा क्या करेगा? अपना अच्छा करना अर्थात अपने अंदर नेगेटिविटी को भरने नहीं देना है, ये होता है अपना अच्छा करना। अगर आया भी विचार तो अपने आप को, जैसे वो बताया ना कि वो गोबर नहीं देखा, क्या देखा? कि जितनी भी भैंसे हैं इसकी, वो मिट्टी नहीं देखी, जितने भी खेत हैं वो उसके। तो मान लो अगर उसको मिल गया, मेरे को नहीं मिला, तो हम भड़क, अच्छी सोच क्या सोच सकते हैं? अच्छी सोच यही सोच सकते हैं, अच्छा है मेरे भाई को मिला। बंधुत्व भावना रख सकते हैं ना, लेकिन कहां रखते हैं? हमें तो नेगेटिविटी ही दिखाई देती है उसकी, हम बंधुत्व भावना नहीं रखते हैं। इसी तरह स्कूल में स्टूडेंट्स का होता है, मेरे से किसी का एक नंबर ज्यादा आ गया तो स्टूडेंट्स की वो हो जाती है। आप ही की बात नहीं, सबकी ही है, गृहणियों की भी है, एक से बढ़कर एक कपड़ा किसी और को मिल गया, उनको ना मिला तो उनका फ्यूज हो जाता है चेहरा कि ऐसा कैसे हो गया ना। हम सब मिलकर के छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। अपना अस्तित्व हमारा रहा ही नहीं, अपना अस्तित्व नहीं रहा है हमारा। आज हम किसी की बातों से हंस देते हैं, किसी की बातों में रो देते हैं, लेकिन नहीं। आध्यात्मिकता ये कहती है आप शक्तिशाली हो, आप स्ट्रांग हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो और कर भी रहे हो, केवल उसमें सुधार की आवश्यकता है। हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत एक्टिव अलर्ट हैं, अलाइव भी हैं, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता क्या है कि हर हाल में मुझे खुशहाल रहना है, हर हाल में मुझे अपने पर अटेंशन देना है, हर हाल में मुझे खुद को देखने की कोशिश करनी है। ये आध्यात्मिकता है। रटना ही नहीं है, केवल चिंतन ही नहीं करना, सबके भले के पीछे मेरा भला हो, भगवान सारे सुखी रहे, धर्म की जय हो, ये बोलना ही नहीं है। गंगाराम की तरह सवेरे उठ के मंदिर में आरती करते यही बोलते हैं ना, सबके भले के पीछे मेरा भला। और अगर प्रसाद लेने की लाइन में मेरे को कोई एक क्रॉस कर जाए तो अब तो सबका भला सोचा था, अब तो ये एक ही क्रॉस करके गया, हमारे से वही सैड नहीं हुआ, तो हमने क्या किया? गंगा राम वाला ही काम तो किया, वही काम तो किया ना। आज हम सबकी दशा भी ऐसी है। हमारी बड़ी दीदी ये स्टोरी सुनाती होती हैं, सरला दीदी हैं हमारे पानीपत जोन के। वो कहते हैं कि एक बार सारे तोते उड़ के जा रहे थे, तो शिकारी जो था वो जाल बिछाता था, तो एक दो तोता उस जाल में अटक जाता था और शिकारी उसको पिंजरे में कैद कर लेता था और सेल कर देता था। अब सारे तोते मिलके बैठे और उन्होंने मीटिंग की। क्या मीटिंग की? कि शिकारी का तो रोज का काम है, हमें अपने पर ध्यान देना है, हमें जाल से बचना है, जहां जाल होगा ना वहां से उड़ान दूसरी तरफ ले लेनी है। तो उन्होंने कहा कि ये हमें याद कैसे रहेगा? कहते हम सब मिलके गीत गाएंगे। तो उन्होंने सबने मिलके कौन सा गीत गाया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुझे फंसना नहीं। कौन सा गीत गाया? हाँ, तो वो ऐसे गीत गाते हुए आकाश की ओर अपनी उड़ान भर रहे थे। तो शिकारी आया, उसने जाल भी बिछाया और दाना भी डाला, तोते भी आए और वो गीत गुनगुना रहे थे। अब गीत गुनगुनाते हुए क्या हुआ, वो सारे तोते जाल में बैठ के क्या कर रहे, दाना खा रहे और गाना गा रहे। दाना खाते हुए कौन सा गाना गा रहे? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुझे फंसना नहीं। फंस भी गए हैं और गा भी रहे हैं। ये हालात हमारे हैं, ये उन तोतों के नहीं है, ये हमारे हैं। गा भी रहे हैं सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका सब अच्छा हो, बस गा ही रहे हैं। उनके लिए एक्शन जो लेना होता है वो नहीं ले रहे हैं। और वो एक्शन कौन सा लेना होता है? अपने मन को स्टेबल रखने का, बस और कुछ नहीं। जैसे अभी आपने देखा पंजाब में कितनी बाढ़ आई, कितने पीड़ा ग्रस्त लोग हैं, कितने आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनके घर के घर ही पानी में हो गए, उनकी सब बह गया, बच्चे भी बह गए, उनका सब सामान भी बह गया, उनके सब गायें भी बह गई, सब बह गया। अब ऐसे लोगों के लिए आप लोग सोचेंगे भले का काम करते हैं, कोई वस्त्र इकट्ठा करेगा, कोई कंबल इकट्ठा करेगा, कोई राशन करेगा और वहां पर निरंतर चलेगा, है ना। ये पुण्य का काम है जो सब कर रहे हैं और इसमें आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलती हैं। लेकिन इस पुण्य को थोड़ा सा और आगे जिसको हायर थिंकिंग कहा, थोड़ा सा और आगे क्या कि आप दिन भर में आधा घंटा उनके लिए बैठे और बैठ करके हाथ जोड़ करके परमात्मा के आगे कि हे सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, हम भी तेरे बच्चे हैं, वो भी तेरे बच्चे हैं। इस समय उनको मनोबल की बहुत आवश्यकता है, इस समय उनको शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। तो मैं अपनी शुभ भावना शुभकामना वहां पर उन सबको अपने सामने इमर्स करते हुए, उनको दुआएं दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ, उनका मनोबल बढ़ रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, उनको मनोबल बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे अंदर विचार क्रिएट करना, पूरी फैमिली को बिठाना, ये है एक्चुअल स्पोर्ट। और इस स्पोर्ट के लिए कोई काम नहीं करता है। बाहरी तो करना ठीक है, देखो उनकी वो आवश्यकता है, वो आवश्यकता पूर्ण करना। लेकिन मान लो जिस माँ का यंग बच्चा ही बह गया, वो खाना खाती हुई भी उसके आंसू नहीं रुक पा रहे हैं, तो आंसू रोकने के लिए भी तो उसको मेंटल स्पोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए? तो मेंटल स्पोर्ट करना ये आध्यात्मिकता है। जैसे पानीपत में ये कार्य चल रहा है, एक ही समय में 108 लोग बैठ करके उनके लिए साधना कर रहे हैं और वो एक महीने तक करते ही रहेंगे। तो आप में से भी जो परिवार मिलकर के इकट्ठे बैठ करके 10 मिनट अपने मंदिर में या रात को 10 मिनट बैठ करके हाथ जोड़ के उनके लिए दुआ करके उनको पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं ना, वो जरूर करें। इससे बड़ा महापुण्य कोई नहीं होगा। तो मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा में शक्ति हो, समझ हो, शक्ति भी हो और समझ भी हो। कईयों में शक्ति होती है, कईयों में समझ होती है। कई समझदार बहुत होते हैं लेकिन सुनने सहने की शक्ति नहीं होती, और कईयों में सुनने सहने की शक्ति बहुत होती है पर समझ नहीं होती। हमें बैलेंस रखना है, वर्क बैलेंस है ना हमारा टॉपिक इस कॉन्फ्रेंस का, तो हमें बैलेंस रखना है उस चीज में, स्नेह का और शक्ति का। आप सब अपने परिवारों में अपने बच्चों को टू मच स्नेह देते हो, और कई परिवार ऐसे हैं हम वहां टू मच ऑफिशियल रहते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं, अरे इनको बिगाड़ना नहीं है, इनके साथ ज्यादा नहीं बोलो, इनको करने दो, तुम्हें ये करना ही है, तुम्हें ये वाली पढ़ाई पढ़नी है, तुम्हें वहां एडमिशन लेनी है। प्रेशराइज किस लिए? हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े हैं, प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को। मन नहीं भी है उनका डॉक्टरिंग इंजीनियरिंग करने का, तब भी उनको जबरदस्ती एडमिशन दिलाया जाएगा। अरे माँ बाप है, हम नहीं सोचेंगे इनके बारे में तो कौन सोचेगा? एक शक्ति रूप, ऑफिशियल रूप। और स्नेह वाले, अरे तुमने जो करना वो कर लो, छोड़ ही देते हैं। वो छुटेले भी बिगड़ जाते हैं और ऑफिशियल वाले भी बिगड़ जाते हैं, दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही खतरनाक है, खतरनी महा खतरनाक है। इसीलिए आज मेजोरिटी बुजुर्ग रोते हैं कि जितना हमने स्नेह दिया था, जितना प्यार से हमने पाला था, कोई रोक टोक नहीं रखी थी, सारा कुछ दिया था, उतना ही हमें इन्होंने अलग कर दिया है, उतना ही ये हमारे को पूछते नहीं। और शक्ति वाले भी रोते हैं, काश बच्चों को प्यार दे दिया होता तो आज वो हमारी सुनते, आज वो हमें मानते, दोनों ही रोते हैं। तो कहां कमी है? बैलेंस की। स्नेह अगर बिना शक्ति के दिया गया स्नेह, वो हिंसा है, हिंसा है, मोह है। ऐसा मोह का जाल है कि जो आप पूरी उम्र ही रोते रहेंगे। तो अगर किसी को स्नेह देना भी है तो शक्ति रूप बन के दो, खाने पीने पहनने में उनको खुली छुट्टी दो, लेकिन जहां नियम मर्यादाओं संयम की बात आती है वहां ऑफिशियल बनो, उनको कायदे कानून सब पता हो। इसको कहते हैं राजयोग। जहां हम बैलेंस में आ जाएं वो राजयोग कहलाता है। तो राजयोग में स्वयं को जानना और परमात्मा को जानना, ये दो चीजें जरूरी हैं। जो आगे होने वाले आपके सत्र हैं उसमें आपको इसी की पहचान मिलेगी, हु एम आई, कौन हूं मैं, कहां से आई हूं, करना क्या है, कर क्या रहा हूं। क्योंकि हमारे जो दादी, जानकी दादी थे, वो हमेशा यही बातें बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे करना क्या है। चलो आप अच्छे वाली सोच जो है, हायर थिंकिंग, उससे नहीं, एक साधारण थिंकिंग से ही पूछो अपने आप को, मैं कौन, पति, अगर मैं पति हूं तो क्या पत्नी मेरे से संतुष्ट है, मैं अच्छा पति हूं, पत्नी क्या मैं पत्नी धर्म निभा रही हूं, बच्चा क्या मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं, सास क्या मैं मां जैसी हूं, बहू क्या मैं यहां बेटी तरह रहती हूं, ये अपने आप से पूछो। जब हम ये सारी चीजें अपने आप से यहां पर पूछेंगे, मैं कौन, मुझे करना क्या है, मैं अभी वो बात नहीं कर रही हूं राजयोग की बात नहीं, अभी यहां वाली जहां हम रह रहे हैं वो परिवार की ही बात कर रही हूं। पत्नी को अधिकार पूरे चाहिए लेकिन कर्तव्यों में ऊपर नीचे है। पति को जो है वो रोब पूरा चाहिए, कार्य पूरा चाहिए, किसकी बदौलत? एक पैसे की बदौलत। लेकिन आज बहनें भी कम नहीं है, वो भी कमाती हैं, वो आपको आपका पैसा देखती नहीं, तो पैसे की तो कोई यहां पर नाम ही नहीं है। भले हम कहते हैं पैसा पैसा पैसा, पैसा नहीं, रिगार्ड, स्नेह। एक को रिगार्ड दो तो वो आपको रिगार्ड देवे, लेकिन रिगार्ड कैसा दो? अनकंडीशनल, कि वो मुझे देवे या ना देवे, मुझे तो फॉरएवर देना ही है। क्या देना है? रिगार्ड, मुझे रिगार्ड देना है। जब आप बिना कुछ लिए दिए, बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे रिगार्ड देते रहेंगे, तो वो कब तक ऐसे ही रिगार्ड लिए जाएगी या आपको रिगार्ड देना शुरू करेगी? आज हम रिगार्ड देते हैं टाइम पर खाना दे दिया तो, आज हम रिगार्ड देते हैं मेरा कहना मान लिया तो, आज हम रिगार्ड देते हैं मेरे साथ कदम मिलाकर के चल पड़ी तो, लेकिन नहीं दिया मेरे मतलब का नाश्ता पानी, लेकिन फिर भी मैंने रिगार्ड दिया और अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखा, हेलो हाय की और मुस्कुराता हुआ गया। दोपहर को आए, नहीं आपको लंच मिला घर में बना बनाया, किसी को बोल दिया, होटल से मंगवा लिया, तब भी आपने मुस्कुराता चेहरा रखा और उसको रिगार्ड दिया, तो वो कितने दिन में परिवर्तन हो जाएंगे? कितने दिन में परिवर्तन हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी ना। कौन कौन समझता है वो जल्दी परिवर्तन हो जाएगी? सब समझते हैं ना, लेकिन हमारे किसी किसी के अंदर नेगेटिविटी का कौन सा कीड़ा घूमता है? चाहे सारी उम्र इसके चरण धो लो, इसने नहीं बदलना। बहनों का भाइयों के लिए और भाइयों का बहनों के लिए ऐसे चलता है। अरे आप करके तो देखो, हम शुरुआत ही नहीं करते अच्छे काम की, शुरुआत ही नहीं करते। शुरुआत करके देखो, फिर आप कभी नहीं बोलेंगे। हम शुरुआत करके नहीं देखते हैं, और अगर हम शुरुआत करते भी हैं तो बीच बीच में हम कुछ गलत भी सोचते रहते हैं, तो बीच बीच में जो हम गलत सोचते हैं वो वाली चीज फिर वो असर होने नहीं देती है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है, हमें अगर देना है तो बिना किसी कंडीशन के देना है। कंडीशन से देने वाले जो हैं आज नहीं तो कल भी दुखी होंगे, कभी भी वो संतुष्ट और खुश नहीं रह पाएंगे। राजयोग के लिए हमें क्या करना है? अपने आप पर कंट्रोल करना है, अपने आप को सिखाना है, अपने आप को सुधारना है। ये चीजें राजयोग सिखाता है। राजयोग में जो बात चल रही थी मैं और मेरे की, तो आपको जैसे पहले भी बताया कि आध्यात्मिकता क्या कहती है, खुद को विजुअलाइज करो, खुद को एनालाइज करो। ये सबसे पहले बताया ना, खुद को एनालाइज करना, खुद को विजुअलाइज करना। तो उसके लिए जब आप बैठेंगे तो अपने आप से ये प्रश्न पूछना, मैं कौन? क्या ये हड्डी मांस का पुतला या इससे हट करके कुछ हूं? तो आपको आप ही जवाब आएगा कि डेथ के बाद ये पुतला तो यही का यही रह जाता है, तो जरूर मैं कुछ और हूं। कुछ और हूं तो क्या हूं? ज्योति बिंदु आत्मा हूं। वो आत्मा क्या है? शक्ति है। वो आत्मा क्या है? चैतन्य है। वो आत्मा क्या है? परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा की संतान होना साधारण बात है नहीं ना? तो हम सब यहां साधारण नहीं बैठे ना, कौन बैठे हैं? विशेष। मैं विशेष आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा को कोई पैदा नहीं कर सकता है। आत्मा परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा की संतान होने का सौभाग्य है। इसीलिए तो प्रतिदिन गाते हैं त्वमेव माता त्वमेव पिता, गाते हैं या नहीं गाते? अरे जिसका मात पिता भगवान हो उसको काहे की चिंता, जिसका मात पिता भगवान हो उसकी खुशी गायब क्यों? जिसका मात पिता भगवान हो वो परेशान क्यों? क्योंकि केवल वो गंगाराम की तरह मुख से गाया है, दिल से स्वीकार नहीं किया। तो दिल से स्वीकार करना है, मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। ये अपने रूटीन में लेके आना है। ये जब आपकी रूटीन में बातें आएंगी तो आप आध्यात्मिक बनते जाएंगे। सवेरे उठते ही ये आपने चार विचार करने हैं, मैं महान आत्मा हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। पीछे पीछे बोलेंगे, मैं महान आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ये रोज सवेरे जब आप उठ के करोगे और फिर हर घंटे में अपने आप को याद दिलाओगे तो कुछ गलत काम करने से हम बच जाएंगे, गलत सोचने से हम बच जाएंगे। ईश्वर की संतान हूँ ऐसा सोचने में शक्ति आ जाएगी। तो हमें हमेशा हर हाल में खुशहाल रहने के लिए ये जो विचार आपको दिए हैं इनका अंदर मंथन करना, चिंतन करना ये बहुत जरूरी है। अगर हम इनका चिंतन नहीं करेंगे, इसका मंथन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम आध्यात्मिक नहीं रहेंगे। वैसे हम अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक बनने के लिए, राजयोगी बनने के लिए अपनी जो विचारधारा है इसमें महापरिवर्तन लाना है। जब मेरे विचारों में महापरिवर्तन आ जाएगा तो मैं राजयोगी कहलाऊंगा, मैं आध्यात्मिक पर्सन कहलाऊंगा, मैं पॉजिटिव पर्सनालिटी कहलाऊंगा। लेकिन अगर मेरे विचारों में ही परिवर्तन नहीं है तो हम कुछ नहीं। तो इसीलिए हम भगवान के बच्चे हैं ये जान करके फिर भगवान क्या है और मैं क्या हूं उसके साथ कंपेयर करो। हम एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करो, किसके साथ करो, भगवान के साथ करो। भगवान के आगे कोई भी जाता है, चोर जाता है, डाकू जाता है, हथियारा जाता है, साधु जाता है, संत जाता है, फकीर जाता है, उसका चेहरा कैसा होता है, सबको देखते हुए चेहरा कैसे होता है, एक रस ना, एक ही जैसा होता है ना। हथियारे को देख करके परमात्मा घूरता तो नहीं, गुस्से में तो नहीं आ जाता, डाकू को देख के तो नहीं आ जाता, और कोई भक्त चला गया उसको देख के कोई ज्यादा और खुश हो जाए ऐसा तो नहीं होता, एज इट इज रहता है। अगर भाव बदलते हैं तो किसके बदलते हैं, इंसान के। वो जो मंदिर में मूर्ति है वो एज इट इज है, भाव बदलते हैं तो किसके, इंसान के बदलते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आप को उससे कंपेयर करो कि परमात्मा जब हर एक की कर्म फिलोसफी देखते हुए, हर एक के कर्म अपने अपने हैं, जो जहां डिजर्व कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है, ऐसा सोचते हुए भगवान निश्चिंत है तो मैं चिंता क्यों करूं, मैं क्यों कहूं कि ये मैं डिजर्व करता था, वो डिजर्व नहीं करता था। आप मॉल में जाते हो कुछ खरीदने के लिए तो आपकी पॉकेट जो अलाउ करती है आप वहां तक ही खर्चा सीमित रखते हैं, और अगर आप देखते हैं पॉकेट में जो है कम है तो आप उन चीजों को देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं है। और अगर आपका साथी कह भी दे वो बहुत अच्छी है, आपको क्या पॉकेट देख पहले अपनी, कहते या नहीं कहते, तो वो पॉकेट देख अपनी का भाव क्या है। अगर मेरे साथ मेरे परिवार में कोई अच्छा व्यवहार करने वाली नहीं है तो मेरे कर्मों की पॉकेट ऐसी रही होगी ना, या नहीं रही होगी, ऐसा मैं डिजर्व करता था तभी मुझे ये परिवार मिला, अच्छा परिवार मिला, मेरे कर्म ऐसे थे मैंने वहां पर जन्म लिया, अच्छा परिवार नहीं मिला, मेरे कर्म ऐसे थे इसलिए मैंने वहां जन्म लिया। तो मेरे कर्म मेरे को डिजर्व करवाते हैं। कहते हैं आपकी जो सफलता है वो आपके कर्मों पर डिपेंड करती है, कर्म इतने अच्छे करो, इतने ईमानदारी से करो, इतने शक्तिशाली बनकर के करो कि सफलता जो है अपने आप आपके पीछे घूमेंगी। पर हम अपने कर्मों पर अटेंशन नहीं देते हैं, जैसे शुरू में बताया ना, अपने पर ही अटेंशन नहीं है, खुद को ही नहीं देखते हैं, बाकी सबको देखते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, कोई एक व्यक्ति आ सकता है यहाँ, कोई एक जन आ सकता है, आगे आ जाएंगे। तो हम सब अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे, हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, हमारे कर्म अच्छे खुशी वाले बनेंगे, अच्छी सोच वाले बनेंगे, निर्ममता वाले बनेंगे, सेवक वाले बनेंगे, तो हम जो है हमेशा के लिए ही खुश होंगे। फिर कभी खुशी कभी गम ये नहीं होगा, हमेशा खुश रहेंगे। अभी हमारे सामने भाई साहब हैं, हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं। भैया आपने इस हॉल में ऑब्जर्व करो क्या क्या है और फिर आपको बाद में बताना है, पहले अच्छे से देख लो, आपको कुछ सेकंड देखने के लिए दिए जाते हैं। अच्छे से देखना, आप लोग भी देखो, आप इनको नहीं देखो, आप भी देखो इस हॉल में क्या क्या है, खड़े होके भी देख सकते हैं क्योंकि पीछे भी बहुत कुछ है, साइड पे भी है। देख लिया भैया, और टाइम तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, ओके। वो माइक पकड़ो और बताओ आपने क्या क्या देखा। अब देखना इनसे कोई चीज छूट ना जाए। हाँ, आपने भी देख लिया ना सारा कुछ अच्छे से देखा, आजू बाजू इधर उधर सब देख लिया। अब भैया बताएंगे आपने इस हॉल में क्या क्या देखा।
ओम शांति। मुझे तो सबसे पहले हर दरवाजे के ऊपर डायमंड दिखाई दिए।
वाह क्या बात है, सबसे पहले डायमंड।
और जो स्लोगन्स दिख रहे,
गुड,
हर स्लोगन में बहुत अच्छी बातें हैं। तो अभी तो मेरा पहला दिन का सेशन है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि मुझे भी इस डायमंड जैसा बनना है।
वाह, और क्या देखा? स्लोगन्स हैं, दरवाजों पर डायमंड है, और क्या है ऑडियंस में बोलेंगे क्या क्या है? और पीछे चेयर्स हैं, इतना बड़ा कर्टन लगा हुआ है, टेबल चेयर है, कितना कुछ तो है। ये देखा भी आपने?
हाँ देखा।
बताओ ना फिर।
वो पर्दे के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि और बड़ा हॉल है।
वेरी गुड, कमाल है। देखो पर्दे के पीछे देखने की भी है नजर, जबकि पर्दे के पीछे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर हॉल तो है इतना तो पता है।
और दादी जी दिखाई दे रहे थे,
दादी जी दिखाई,
ब्रह्मा बाबा
दिखाई दे रहे थे।
और उसके बाद ये ट्रांसलेटर देख रहा था, हर लैंग्वेज में अलग अलग ट्रांसलेटर है, तो उसके चैनल नंबर देख रहा था, कन्नड़ा का, मलयालम का, और ये साइड में फ्रेंच अलग अलग देख रहा था।
अच्छा, और क्या? और इतने सारे लोग नहीं दिखाई दिए?
हाँ नहीं, लोग तो मैं अभी देखा।
अच्छा, और क्या दिखाई दिया? बैठ जाइए, आप उनको बोलने दीजिए।
और हेलीकॉप्टर फैन देखा था।
अरे वाह क्या बात है, और क्या देखा?
और लाइटिंग देख रहा था।
गुड, देखो कितना कुछ देख लिया ना, लेकिन सबसे पहले एक अच्छी चीज देखी, क्या? डायमंड देखा। इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। बैठ जाएंगे भी आप अपनी सीट पर, हिम्मत करके आप आगे आए और इतना आपने इतना सब कुछ देखा। अगर इसमें से छूटा तो क्या छूटा? अब जाते जाते याद आ गया, कहते खुद को देखना छूट गया। तो ये तो खैर एक छोटी सी एक्टिविटी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पर सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, छोड़ेंगे तो किसको छोड़ेंगे? अपने आप को। ऐसे ही घर परिवार में होता, बीवी को देखा, बच्चे को देखा, माँ को देखा, ऑफिस वालों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, नहीं देखा तो किसको नहीं देखा? खुद को नहीं देखा। तो खुद को देखना, खुद से बातें करना, खुद को समझना, ये आध्यात्मिकता है, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। लेकिन इन्होंने जैसे ही कहा कि मैंने डायमंड देखा, तो ये भी एक अच्छी थी कि हमारी जो नजर है, देखो डायमंड पर गई, फिर हॉल के पर्दे के पीछे गई। तो अगर हमारी नजर अच्छी बातों पर जाती है तो हमारा जीवन, हमारा दिन भी अच्छा जाता है, और अगर हमारी नजर अच्छी बातों पर नहीं जाती है तो हमारा दिन भी अच्छा नहीं जाता है। आपने सुबह उठते ही पड़ोसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, एक अच्छी चीज देखी ना। आपने उठते ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा तो आपके अंदर भी एनर्जी आई ना, अरे ये दौड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता हूं। आपने किसी को रोड क्रॉस कराते हुए देखा, आपने कभी नहीं कराई होगी तो आपके अंदर भी आएगा कि ये भी पुण्य मैं कर सकता हूँ। छोटे छोटे काम हम किसी के अच्छे देखते हैं तो हमारे अंदर अच्छे भाव आते हैं, और अगर हमारी नजर ही बुराइयों पर पड़ती है तो हमारे अंदर भाव अच्छे नहीं आते हैं, और जब हमारे अंदर भाव अच्छे नहीं आते हैं तो वो अंदर ऐसे रसायन पैदा करते हैं, एक डिजीज का रूप ले लेते हैं, बीमारी का रूप ले लेते हैं। क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा ना, 90% डिजीज जो है कहां से होती है? मन से। 10% ही है बस दूसरी, तो हम उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अपनी बीमारियां खुद ही क्रिएट करते हैं। आज हम यहाँ पर बैठे एक संकल्प लेंगे कि हमें परमपिता परमात्मा ने इतना अच्छा चांस दिया है, इतने अच्छे स्थान पर बुलाया है, तो हम यहाँ से महापरिवर्तन का संकल्प लेकर के जाएंगे। और महापरिवर्तन एक ही है, वो कौन सा? खुद का परिवर्तन। कोई किसी को नहीं बदलेगा, किसको बदलना है? खुद को बदलना है। कौन कौन ये संकल्प लेके जाएगा? इतने सारे बदल जाएंगे तो संसार अपने आप ही बदल जाएगा, क्योंकि वैसे भी संसार और संस्कार दो ही चीजें होती है ना। संसार भी होना चाहिए लेकिन उसमें अच्छे संस्कार भी होने चाहिए, और जब हम खुद को बदलेंगे तो सब में ऑटोमेटिक अच्छे संस्कार हो जाएंगे। तो अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए ये चार ही चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हर हाल में खुशहाल खुश रहना है, दूसरी बात निर्माण हम्बल जो आपको बोला है, सेवक समझना, हेड ऑफ द फैमिली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं समझना है, वो भगवान है। हेड ऑफ द फैमिली कौन है? अगर हम होते तो सदा किसी को अपना साथी बना के रख सकते थे ना, लेकिन वो कब बिछड़ जाता है पता नहीं होता। तो हेड ऑफ द फैमिली कौन है? गॉड है। ऐसी ही तीसरी बात बताई आपको, हायर थिंकिंग, हमारी जो सोच है वो हमेशा ऊंचे से ऊंची होनी चाहिए, साधारण नहीं होनी चाहिए। और चौथा आपको बताया मेडिटेशन, जो आप अगले 3 दिनों में सीखेंगे। तो ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हमारा प्रतिदिन अच्छा होगा, हर पल अच्छा होगा, हर पल सुखदाई होगा। और रोज शुक्रिया करना है परमात्मा का, कभी भी परमात्मा से शिकवे नहीं करने हैं, शिकायत नहीं करनी है, परमात्मा का परमात्मा होने का दावा नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करनी है। जैसे आप अपनी इतनी समझ रखते हो कि बच्चों को किस एज में क्या चाहिए, तो परमात्मा भी समझ तो रखता होगा या नहीं रखता होगा या नहीं? तो भगवान तूने ऐसा क्यों किया, भगवान तूने वैसा क्यों किया, ये चीजें हमें नहीं सोचनी है। छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। दो व्यक्ति आते हैं किसी गुरुजी के पास। एक व्यक्ति है वो बोलता है, गुरुजी भगवान को कहो कि तूने मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरे से संभालना मुश्किल हो रहा है, प्लीज भगवान को कहो मुझे देना बंद करे। दूसरा व्यक्ति जो आता है वो बोलता है, गुरुजी मेरा भी मैसेज देना भगवान को, उनको कहना कि मुझे कुछ नहीं दिया, तन पे कपड़ा नहीं दिया, रहने को घर नहीं दिया, खाने को रोटी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो मुझे कुछ देना शुरू करे, उसको दिखता भी है या नहीं, ये मेरी ओर से मैसेज देना। गुरुजी कहते हैं अच्छा कुछ पल वेट करो। गुरुजी ध्यान साधना में जाते हैं, फिर वो शिष्य जो दो भाई आए हैं वो फिर पूछते हैं, हमारा मैसेज दिया भगवान को? उन्होंने कहा हाँ दिया। पहले वाले का क्या था मैसेज? हमें देना बंद करें। तो उसको रिप्लाई क्या मिला? तुम शुक्रिया करना बंद करो तो ऑटोमेटिक देना बंद हो जाएगा। दूसरे को कहा तुम शुक्रिया करना शुरू करो तो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। फिर वो कहता है मैं किस चीज का शुक्रिया करूं, इस फटे हुए शॉल का? क्योंकि उसके ऊपर फटा हुआ शॉल ही था। तो वो ऐसा बोल रहा होता है, हवा का झोंका आता है और वो भी उड़ जाता है। तो उसने कहा अरे भले मानस, अगर तू फटे हुए शॉल का ही शुक्रिया करता तो तेरे पास दूसरा शॉल आ जाना था। तो इसीलिए हमें हर हाल में क्या करना है? शुक्रिया करना है। जो इतना मिला इसका शुक्रिया करेंगे तो वो इतना हो जाएगा, इतना मिला इसका शुक्रिया करेंगे तो इतना हो जाएगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। लेकिन शुक्रिया कैसा हो? दिल का, ऑफिशियल नहीं, फैशन वाला नहीं। आजकल गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ये सब फैशन वाले हैं, दिल से नहीं है। जैसे आपको वो कराया ना कि एक दूसरे को ओम शांति करो, तो ऐसे करके की गई, उन्हें तो देखा भी नहीं कि ओम शांति की किसको है, मेरे बाजू में बैठा कौन है। ये गुड मॉर्निंग थैंक यू फैशन वाले नहीं, दिल वाले परमात्मा को पसंद है। दिल से करो, थोड़ा सा ही कार्य करो पर दिल से करो। दिल से किया हुआ कार्य जो है वो दुआएं प्राप्त कराएगा, दिखावे से किया हुआ कार्य आपकी दुआओं की पूंजी खत्म करेगा। और आध्यात्मिकता कहती है आपके कर्मों की पूंजी जो है दुआओं से भरी हुई हो, आपका दुआएं जो है इतना स्टॉक हो कि बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी आप स्टेबल रह सको, इतना स्टॉक दुआओं का हो। तो आप हमेशा दुआएं लेते रहें, दूसरों को दुआएं देते रहें, ये मेरी शुभ आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।
आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा अपने परिवर्तन से ही, परिवर्तन जगत जग बदलता जाएगा, जग बदलता जग बदलता जाएगा।